से 12 मिनट हैं, वो ये है कि एक सवाल है कि क्यों नवासे रसूल को तना छोड़ दिया, 100 कुछ लोगों के अलावा बाकी मदद नहीं की किसी ने भी या साथ नहीं दिया। इसकी टेक्निकली तो काफी डिटेल में गुफ्तगु हो सकती है कि क्या है, लेकिन अगर पुरानी पॉइंट ऑफ व्यू को हम देखें तो जो इस मुख्तसर वक्त में जो बात हो सकती है वो ये है कि सिर्फ ये मसला सिर्फ इमाम हुसैन के साथ नहीं है, इमाम से पहले भी जितने नबी आए हैं, जहां तक जिन अंबिया की हिस्ट्री हमारे पास है कुरान में, उन हिस्ट्री के अंदर हम देखते हैं कि नबियों के साथ भी ऐसा हुआ है। मसलन हजरत मूसा की हिस्ट्री को ज्यादा रिपीट किया है खुदा ने, और उसके अंदर अजीब है कि एक वक्त ऐसा आता है कि हजरत मूसा की कौम हजरत मूसा से कहती है इज अब अंत रब्बुका फकातला, कहता तुम और तुम्हारा खुदा जाके फिरौन के साथ लड़ाई करे, इन्ना हुना कायदुन, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं, जाओ तुम और तुम अपने खुदा के साथ जाके फिरौन के साथ लड़ के आ जाओ। उस वक्त हजरत मूसा खुदा से मुखातब होते हैं, ये कुरान की आयतें हैं, उसमें कहता है रब्बी ला अमलिक इल्ला नफ्सी व अखी, कहता है खुदाया देखो मेरे पास तो मैं कैसे लड़ूं इनके साथ, मैं हूं और मेरा भाई है, इसके अलावा कोई है ही नहीं लड़ने के लिए, कोई साथ देने के लिए तैयार ही नहीं है, मैं अकेला हूं, साथ में मेरा भाई जो कि हजरत हारून है वो है। और हजरत हारून जो है जवाब देते हैं इन्नल कौम मस्तज़अफूनी वकादु यक्तुलूननी, कहता है खुदाया देखो मेरी कौम ने मुझे मुस्तज़अफ बना दिया, कमजोर कर दिया है, यानी मुझे कमजोर, मैं कमजोर नहीं था, मेरी कौम ने साथ नहीं दिया तो इस पहलू से मैं कमजोर हो गया, और कादु यक्तुलूननी, बल्कि वो तो मुझे मारना चाहते थे, कत्ल करना चाह रहे थे। ये नबी हैं, अल्लाह के नबी साहिबान किताब हैं, उलुल आजम में उनमें से उलुल आजम है, उनके साथ ये हाल हो रहा है। इसी तरह हजरत नूह के हवाले से भी है कि हजरत नूह के बारे में कहते हैं कि नूह के ऊपर जो है ना कई 100 साल हजरत नूह ने काम किया है, यानी कोई कई सेंचुरियां हजरत नूह काम कर रहे हैं, फॉलोइंग कितनी है हजरत नूह की, खुद हजरत नूह कहते हैं कुरान में मा आमन बिही इल्ला कलील, कहता मुझ पर ईमान नहीं लाए लोग मगर एक ही मुट्ठी भर लोग, छोटे से ग्रुप ने, मैंने कई 100 साल यानी कई सेंचुरीज मैंने तबलीग की काम किया, रिजल्ट आउटपुट क्या आ रहा है कि लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, इन्हें कि पैगंबर की तबलीग में या उसमें कोई खामी आ रही है, नहीं, कह रहा है कि लोग एक्सेप्ट नहीं करने के लिए तैयार नहीं है। फिर इसी तरह जो है हजरत लूत अलैहि सलाम के बारे में भी है, कुरान में कहता है मा वजदना फीहा गैरा बैतिन मिनल मुस्लिमीन, कह रहे हैं कि वो फरिश्तों की जबान से कहलवाता है जो कि आए थे एक यंग लड़कों की शक्ल में, कहते हैं कि देखें हमने यहाँ पे कोई भी घर जो है ना जो ईमानदारों का घर हो, जो साहिबान ईमान हो, सिवाय इस घर के हमें कोई और घर मिला ही नहीं है। यही सिचुएशन हम देखते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ भी रही है कि हजरत ईसा के अपने स्टूडेंट छोड़ के भाग जाते हैं, जब जिस वक्त रोमन्स और उस वक्त की जो एक मुनहरिफ जूस कम्युनिटी थी वो जब उनके पीछे आ गए मारने के लिए हजरत ईसा को, तो उस वक्त जो है हजरत ईसा को छोड़कर चले गए, उनके स्टूडेंट्स भी छोड़कर चले गए, और खुदा फरमाते हैं कि मैंने हमने हजरत अपने पैगंबर को नजात दे दी, बचाया, बल्कि हमने क्या किया रफाहुल्लाहु इलैहि, हमने अपनी तरफ उनको उठा के ले गए आसमान की तरफ, क्योंकि जमीन में अब रहने के लिए उनके लिए कोई जगह ही नहीं बची है, वो तो मारना चाहते हैं, कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं है, कहा भाई मारना तो हमने इस नबी को कत्ल करने नहीं देना है इस, क्योंकि इसकी इसको बाकी रखने की कुछ फिलोसफीज हैं खुदा के नजदीक, कोई हिकमतें हैं, इसलिए जो है हमने इनको रखा हुआ। इसी तरह जो है अल्लाह के रसूल के बारे में भी है कि क्राइसिस जब आते थे तो जिस वक्त जंग के दौरान भी है कि जो है भाग खड़े हुए, तो कुरान ने कोट किया है बहुत सी जगहों में, तुम लोग छोड़ के जा सकते हो तो फकत फर रूफी कदीर के, मतलब कहता है कि इस दस अदून वाला तलाउन अला आदिन व रसूली यदउकुम फी उखराकुम, कह रहा है कि देखो तुम लोग भाग रहे थे और रसूल तुम्हें आवाजें दे दे के पुकार के कह रहा था कुछ बैठो कहाँ भाग रहे हो। जंग हुनैन के बारे में भी कुरान मजीद की आयत है, वो कहता है वो यौम हुनैन इज अजबतकुम कसरतकुम फलम तुग़नी, कहता है कि जंग हुनैन में जो है ना यही सूरत हाल तुम्हारी बनी। तो इसी तरह जो है दीगर अल्लाह के रसूल के बाद की भी सिचुएशंस देखें तो इसी तरह जो है आती हैं, अतः जो हम लोग उसमें कुरान मजीद में पढ़ते हैं तो बाज़ औक़ात कहते हैं कि सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन, यानी सुल्लतुम मिनल अव्वलीन से मुराद यानी थोड़ा सा एक ग्रोह कहा कि जो ईमान ले आया और ज्यादातर जो थे वो तो नहीं लाने वाले थे। असल में क्या है कि इस तरह की जो जंग है, ये जंगें असल में अहदाफ की जंग होती है। इसमें वेपन और क्या कहते हैं मिलिट्री के ऊपर फतह दिलाना नहीं है, या किसी स्पेसिफिक एरिया पे कब्जा करना हदफ नहीं है, किसी लैंड के ऊपर कब्जा करना हो या किसी लैंड जो कि दूसरों ने कब्जा किया है उसको फ्री कराना हो, छुड़ाना हो, ये असल में नहीं है। ये जो बाज जंगें होती हैं अंबिया की, जो जंगें हैं ये सारी हैं अहदाफ की जंगें। बड़े ऊंचे अहदाफ होते हैं, उन अहदाफ के लिए ये जंगें लड़ी जाती हैं। और अहदाफ की जो और मकासिद की जंगें होती हैं, इनमें अक्सर लोग पीछे हो जाते हैं क्योंकि उनमें उनको कोई बेनिफिट नहीं आ रहा। अगर कहें जी कि देखें ये क्या कहते हैं मसलन 100 किलोमीटर की लैंड है, बहुत जरखेज है, यहाँ पर इतनी इतने मकान हैं, इतनी हाउसिंग सोसाइटीज बन सकती हैं, यहाँ पर ये हो सकता है, लेकिन हमें इसको लड़ के जाके लेना है लोगों से, तो शायद बहुत सारे आएंगे। इसलिए नहीं आएंगे कि कहेंगे ये खुदा के नबी का या खुदा का हुक्म है, बल्कि कहेंगे यार जमीन का टुकड़ा मिलेगा हमें भी, वहां से कुछ हमें भी बाग मिलेगा, कोई प्रॉपर्टी हाथ में आएगी वगैरह वगैरह। अगर इस तरह कहें जी कि वहां एक ट्रेजर है बहुत बड़ा, उसको अटैक करके लेना है, रसूल का हुक्म आया, तो शायद बहुत सारे आ जाएं। गनीमत अगर मिल रहे तो आ जाए, लेकिन पता चले मकासिद की जंग है, इसमें सिर्फ कुर्बानी देनी है और कुर्बानी दे के एक बड़े मकसद को बचाना है। तो मकासिद क्योंकि बज़ाहिर फिजिकल या मटेरियलिस्टिक कोई चीज नहीं है, उसमें दुनिया की कोई चीज नहीं है तो नहीं आता। तो असल में बेसिकली ये जो जंगे हैं इस किस्म की, ये आइडियोलॉजिकल जंगे होती हैं ज्यादातर, और आइडियोलॉजिकल जंगों में बहुत कम लोग रह जाते हैं। यही बात जो है इमाम ज़माना के हवाले से भी है, वो जो 313 वाली बात है या इस तरह की जो बातें हैं अदद वाली, उसको भी अगर हम लेके आए तो इसी के पैरामीटर्स में एनालिसिस हम कर सकते हैं। इसीलिए डिबेट होती है, पुरानी बहस है ये, कहते हैं कि जो कायनात के बारे में जो कंसेप्ट है हमारा, जिसको पता नहीं क्या वर्ल्ड व्यू भी कहते हैं, लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग्स नहीं देता है। एक और वर्ड यूज करते हैं कॉस्मोलॉजी, अगरचि कॉस्मोलॉजी कुछ साइंटिस्ट उसमें ज्यादा, साइंस और साइंटिफिक उसमें ज्यादा यूज होते हैं, लेकिन ये फिलोसफिकल इश्यूज के अंदर भी यूज करते हैं। कॉस्मोलॉजी यानी कायनात के बारे में आपका जो प्रोस्पेक्टिव है या जो जो आपका व्यू है, किस तरह देखते हो। मसलन किसी के नजदीक कायनात सिर्फ और सिर्फ बस ये हमारी 60-70 साल की जिंदगी कायनात है, और समझते हैं कि मेरी दुनिया सिर्फ 60 और 70 साल की है, उसके बाद एंड है, कुछ भी नहीं है। एक तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है कायनात के बारे में। दूसरा है पॉइंट ऑफ व्यू इससे बड़ा है, वो कहता है नहीं 60-70 साल की नहीं है बल्कि इससे बहुत बड़ी वसी लाइफ है मेरी, और इसके अंदर कुछ अहदाफ और मकासिद है। तो एक शख्स इस अंदाज से जिंदगी जीता है, एक उससे। वही जो हमने एक बहस की थी तकासुर और कौसर की बहस, तो ये तकासुर और कौसर के पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। जो तकासुर की पॉइंट ऑफ व्यू में है उसके लिए करबला में शिकस्त है, जो कौसर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है वो उसकी समझ में आता है कि करबला में शिकस्त थी या कामयाबी थी। आज भी इसी तरह है, आज भी इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने मौजूद है कि आप देखते हैं कि जहां कुर्बानी देना है और कुर्बानी के बदले में दुनिया से कोई फायदा नहीं आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ जो है आखरत का है, तो लोगों की तादाद कम रहती है। हमारे साथ के साथ यही था कि वो जो कमांड कर रहा था, हालांकि वो अंदर से नहीं चाहता था कि सिचुएशन इस लेवल तक चली जाए, वो कोई चाह रहा था कि यार मुझे जो मेरा स्टेटस है कि मैं आर्मी चीफ हूँ फिलहाल, और प्लस ये कि एक रे की हुकूमत भी मुझे मिलने वाली, गवर्नर बनूंगा, ये भी मुझे मिले और मैं नवासे रसूल के कत्ल में भी मेरा हाथ न आ जाए। लेकिन देखा कि आपको दो सिचुएशन में डाला है, जो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद है उन्होंने कहा है कि या ये या वो, या तुम ये करोगे तो वो मिलेगा, अगर नहीं करोगे तो उसने उसको चूज किया, क्योंकि वो तकासुर के वही उसके जहन में वो 70-80 साल की लाइफ का कंसेप्ट या जो उसका वर्ल्ड व्यू था या कॉस्मोलॉजी थी वो ये थी कि बस मुझे जो है ना यही है मेरे पास, ये गई तो गई, उसके बाद कुछ मिलने वाला ही नहीं है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब वो आया तो जाहिर है डेफिनेटली फिर वो इस लेवल तक चले गए कि समझते थे कौन है क्या कर रहे हैं। एक तो होता ना कि अननोन है, पता नहीं चला, गलती से हो गया, ये नहीं है, ये सब समझते थे, जानते थे, पहचानते थे, और ये भी जानते थे कि ये जो कर रहे हैं ये एक बहुत बड़ा क्राइम है, बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है और नाबख्शुदनी गुनाह है, लेकिन नफसानी जो डिमांड है वो इतनी हावी हो चुकी हैं कि अकल उसकी गुलाम हो गई है। जैसे कि हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि عقلیں جو ہے وہ جب خواہشات کی تابع ہو جاتی ہیں یعنی اس کے انڈر کنٹرول چلی جاتی ہیں, عقل کو اصل میں مینج کرنا چاہیے, ہماری جو ڈیمانڈز ہیں اس کو کنٹرول کرنا چاہیے, عقل کو چاہیے کہ وہ مینج کر کے چلائے. لیکن اگر الٹا ہو جائے معاملہ تو نتیجہ پھر یہی نکل آتا ہے. تو انشاءاللہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے کئی اور ڈائمنشنز ہیں جس کے اوپر باریک سے بات کرنی چاہیے. قرآن نے صرف ایک آخری بات میں عرض کرتا ہوں, آلموسٹ دو منٹ اوپر ہو چکے ہیں میرے پاس, وہ یہ کہ قرآن مجید کہتا ہے ساتھ میں یہ بھی اور ہسٹوریکلی بھی ایسا ہی ہے, یہ ذہن میں رکھو کہ جو تعداد کم ہے وہ تعداد ہمیشہ کامیاب ہے, کیونکہ وہ اہداف کی جنگ لڑ رہی ہوتی ہے, جسموں کی جنگ نہیں لڑ رہی ہوتی. تو اسی لیے جگہ جگہ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ کم من فئت قلیلۃ غلبت فئت کثیرۃ باذن اللہ, یعنی چھوٹا سا گروپ ہے بڑے سے گروپ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے اور آمنا سامنا ہے, لیکن کیونکہ یہ چھوٹا گروپ خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے, باذن اللہ ہے, خدا کی حکم کی وجہ سے ہی اس نے یہ سٹینڈ لیا ہے, تو بالآخرہ یہ اپنے اہداف میں اس کثرت کے اوپر زیادہ جو مخالفین کے اوپر غلبہ پا لیتا ہے. اگر یہ خدا کے لیے نہ کھڑا ہوتا تو ظاہر ہے کہ یہ مارا جاتا اور والسلام فنشڈ ہو گیا, ان کی ہسٹری یہیں پہ ختم ہو گئی. کیا ہوا جی, تعداد بھی نہیں تھی, تیار بھی نہیں تھے, پریپریشن بھی نہیں ہے, طاقت بھی نہیں ہے, لڑ گئے, مارے گئے, ختم ہو گیا, فنشڈ, ہسٹری میں ان کی کوئی نام بھی نہیں ہے. لیکن خدا کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو کم تعداد ہوں گے, درست ٹرینڈ لیا ہے, خدا کی خوشنودی کے لیے لیا ہے, کامیاب رہیں گے. کامیاب رہیں گے مطلب کیا, اہداف ان کے زندہ رہیں گے, ان کے مقاصد نہیں مریں گے, ان کے مقاصد کی پروٹیکشن جو ہے خدا کرے گا. کہ خدا نے دو لفظ استعمال کیے ہیں, ایک صبغۃ اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے, یہ خدا کے صبغہ ہیں, خدا کی ایک نشانی ہے, ایک سائن, خدا کا سائن کی طرف بن جاتے ہیں. دوسرا جو امام حسین علیہ السلام کے لیے لفظ یوز ہوا ثار اللہ, یعنی وہ جو جس کے خون کی حفاظت یا خون کا انتقام خود خدا لے گا. انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی آنے والے دنوں میں اس کے اوپر مزید جو ہے ڈسکس کریں گے. صلوات اللہ وسلامہ علیہ, صلوات بر محمد و آل محمد.